द प्रिंट पॉड के इस अंक में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नूतन और आज मैं आपको सुना रही हूँ मानसी फड़के की रिपोर्ट। मुंबई का हो रहा काया पलट, सड़कों से पार्कों तक हेरिटेज की वापसी कर रही है बीएमसी। प्राइवेट बैंक में काम करने वाले मल्हारी पवार मुंबई के शिवाजी पार्क में पेड़ों के एक झुंड के नीचे बैठे आराम कर रहे थे। लंच करने के बाद उनका ये एक छोटा सा ब्रेक था। पास ही में एक छोटा लेकिन भव्य पानी का फव्वारा था। उसके दोनों ओर दो बड़े सुंदर नक्काशीदार बेसिन थे। उन्होंने तकरीबन 1 फुट दूर नीले रंग की नॉब को घुमाया और उसमें से पानी निकलने लगा। उन्होंने अपनी बोतल भरी और बड़ी तल्लीनता के साथ पानी का एक घूंट लिया। यह पत्थर से बने मुंबई के उन कई प्याऊ में से एक है जो 1800 के दशक के अंत और 1900 के शुरुआती दिनों के बीच इस शहर में लगाए गए थे। ज्यादातर शहर के पुराने ट्राम रास्तों पर लगे इन प्याऊ को व्यापारियों ने राहगीरों को फ्री में पानी मुहैया कराने के परोपकारी भाव के साथ बनाया था। समय के साथ साथ मुंबई के प्याऊ और शहर के अन्य हेरिटेज स्ट्रीट फर्नीचर मसलन प्राचीन माइलस्टोन और बैंड स्टैंडर्ड जीड श्रीड हो गए। अगर कहें कि एक आधुनिक महानगर के रूप में शहर के तेजी से होते कायापलट में ये पुराने अवशेष कहीं खो गए तो गलत नहीं होगा, लेकिन पिछले 4-5 सालों में बीएमसी के प्रयासों से शहर की सड़कों पर खड़े ये हेरिटेज स्ट्रक्चर और इनसे जुड़ी कहानियां एक बार फिर जीवंत हो उठी हैं। बीएमसी के हेरिटेज सेल ने अब तक दक्षिण मुंबई के कोलाबा से सायन तक औपनिवेशिक युग के 15 मील के पत्थरों को बहाल किया है। सायन बॉम्बे का आखिरी पॉइंट था। शहर के आखिरी कुछ बचे हुए बैंड स्टैंड में से एक कूपरेज बैंड स्टैंड दक्षिण मुंबई के फोर्ट इलाके में स्थित है। इसे एक बार फिर से लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस देने के लिए तैयार किया गया है। बैंड स्टैंड बैंड के म्यूजिक बजाने के लिए एक ढकी हुई सार्वजनिक जगह होती है। मुट्ठी भर प्याऊ एक बार फिर से राहगीरों को पानी पिलाने के लिए शुरू किए जा चुके हैं। इसके अलावा बहुत से प्याऊ की मरम्मत का काम चल रहा है। बीएमसी आमतौर पर अवैध झोपड़ियों और जर्जर हो चुकी इमारतों को ध्वस्त करने के लिए चर्चा में रहता है, लेकिन अब इसने बहुत सी हेरिटेज साइट के पुनर्निर्माण और नवीकरण करने का काम शुरू किया है। बीएमसी के हेरिटेज सेल को संचालन करने वाले संजय सावंत ने कहा, मील के पत्थरों की बहाली का काम पूरा कर लिया गया है। जिन जगहों से ये पत्थर पूरी तरह से गायब हो चुके हैं, वहां हमने पत्थरों पर नक्काशी कर नए माइलस्टोन बनाए हैं। अब हम प्याऊ पर ध्यान दे रहे हैं, उनमें पीने का पानी वापस लाने की कवायद चल रही है, उन्होंने हमें बताया। हमने मेट्रो और फोर्ट के प्रतिष्ठित फ्लोरा फाउंटेन और कूपरेज बैंड स्टैंड को बहाल किया, जो शहर के मनोरंजन और संस्कृति का एक हिस्सा रहा था। 70 साल की राणा जाथट्टे का घर कूपरेज गार्डन बैंड स्टैंड के सामने है। जब भी वे अपनी छत पर बैठती हैं और बैंड स्टैंड से लाइव संगीत सुनती हैं, तो उन्हें लगता है मानो वह पुराने समय में वापस चली गई हों। 1960 और 1970 के दशक के आखिर में उनके पिता उन्हें हर रविवार शाम को बगीचे में बैंड स्टैंड पर लाइव परफॉर्मेंस सुनने के लिए ले जाते थे। थट्टे याद करते हुए बताती हैं, और मेरी शाम एक गुब्बारा खरीदने के साथ पूरी होती थी, लेकिन फिर धीरे धीरे वीकली म्यूजिक परफॉर्मेंस बंद होती चली गई और 1967 में एस्प्लेनेट की फंड कमेटी द्वारा बनाया गया बैंडस्टैंड बेकार हो गया। वास्तु विधान प्रोजेक्ट से जुड़े राहुल चेंबुकर ने कहा, लकड़ी से बना इसका ढांचा पूरी तरह से सड़ चुका था। हमें पहले इसके ऐतिहासिक संदर्भों को समझना था और उसके बाद हमने पूरी संरचना को तोड़ा और फिर से समेटा। वास्तु विधान प्रोजेक्ट्स ने न केवल कूपरेज बैंड स्टैंड को ठीक करने बल्कि मुंबई के माइलस्टोन और अधिकांश प्याऊ को बहाल करने के लिए भी बीएमसी के साथ भागीदारी की है। चिंबुरकर ने बताया, हमने जमीन पर एक पत्थर का आधार बनाया और पारंपरिक लकड़ी के शिल्प कौशल का इस्तेमाल करके ढांचे को फिर से खड़ा कर दिया। लकड़ी का काम कर रही टीम ने इसे तैयार करते समय पारंपरिक तरीके से जोड़ने वाली तकनीक का इस्तेमाल किया, जो भारत के लिए बेहद अनोखी है। हमने लकड़ी के काम में एक भी कील नहीं लगाई थी, यह इस पूरे ढांचे की खासियत है। फिर से तैयार किया गया है यह बैंड स्टैंड 2018 में सार्वजनिक तौर पर खोल दिया गया था। तब से यह संगीत कार्यक्रमों की मेजबानी करता रहा है, लेकिन यहाँ अभी भी रेगुलर परफॉर्मेंस नहीं दी जाती है जैसे थाटे के बचपन के समय में होती थी। नेशनल सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स ने इस महीने मार्च में यहाँ एक सांस्कृतिक उत्सव आयोजित करने के लिए बीएमसी का सहयोग किया था। वह कहती हैं, जैसे पहले होता था उन्हें हर रविवार को सभी के लिए मुफ्त संगीत समारोह शुरू करना चाहिए, बच्चे इसका पूरा आनंद उठाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि बैंड स्टैंड का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, लोग अपने तरीके से इस जगह का इस्तेमाल करते हैं, कुछ वहाँ योगा करते हैं तो कुछ मेडिटेशन करते नजर आते हैं। बीएमसी के सावंत ने कहा, शहर के अन्य बैंड स्टैंड जिनमें एक वीर माता जीजाबाई भोसले उद्यमान में है ठीक ठाक स्थिति में है, लेकिन बांद्रा बैंड स्टैंड को बहाल करने की जरूरत है। फोर्ट के सेंट थॉमस कैथेड्रल में एक सैलानी चर्च के बाहर एक पट्टिका पर लिखी जानकारी पढ़ने और एक तस्वीर खींचने में व्यस्त है। यह चर्च हॉरिनमन सर्कल के पास एक बाईलेन के कोने में बना है। इस सर्कल को किसी समय में आने जाने के साधनों के लिए सिर्फ बैलगाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों के लिए जाना जाता था। सैलानी जिस पट्टिका को इतने ध्यान से देख रहा था वह बताता है कि यह शहर का जीरो मील था। गिरजाघर के सुरक्षा गार्ड सौरभ पाटकर ने बताया, कुछ साल पहले जब चर्च में कुछ बहाली का काम चल रहा था तो इस पट्टिका की भी मरम्मत की गई ताकि इसे आसानी से पढ़ा जा सके। पिछले कुछ महीनों से यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है, लोग पट्टिका पढ़ने और तस्वीर लेने आते हैं और फिर चर्च को अंदर देखने जाते हैं। चेंबुरकर ने कहा कि बॉम्बे पहले अंदर से एक पारंपरिक शहर था। उन्होंने बताया, वहाँ गेट थे, सेंटर में एक चर्च था, सेंट थॉमस कैथेड्रल, और फिर बैटलमेंट वॉल को ढहा दिया गया और शहर का विस्तार सायन तक कर दिया गया। ट्रॉम आने से पहले आने जाने के लिए विक्टोरिया या बैलगाड़ी का इस्तेमाल किया जाता था या फिर लोग पैदल ही आ जाया करते थे। दूरी को मापने की इकाई मील थी और जीरो मील सेंट थॉमस कैथेड्रल था। शहर भर के अन्य सभी माइलस्टोन में लिखा होता था, सेंट थॉमस कैथेड्रल से एक मील, सेंट थॉमस कैथेड्रल से दो मील, और इसी तरह आगे भी। गाड़ियों के आने से ट्रॉम धीरे धीरे मुंबई की सड़कों से गायब हो गए और मील के पत्थरों का अब कोई इस्तेमाल नहीं था, वो बेकार हो चुके थे। वे उस समय की बुनियादी ढांचा प्रबंधन प्रणाली की एक झलक देते हुए बस ऐतिहासिक निशाना बनकर रह गए, जब तक बीएमसी और वास्तुविधान ने इस साल इन्हें फिर से बहाल करने का काम पूरा नहीं किया था। तब तक उनकी उपेक्षा होती रही। बीएमसी के मुताबिक उन्होंने 11 माइलस्टोन को फिर से बहाल किया। इसके अलावा पूरी तरह से गायब हो चुके 5 अन्य को पत्थर और नक्काशी के साथ फिर से तैयार किया जा रहा है। चेंबुरकर ने कहा कि सभी मील के पत्थरों में एक QR कोड भी है और इन सभी माइलस्टोन की जानकारी के साथ एक ऐप लॉन्च करने की योजना है। मुंबई के एक वरिष्ठ कला शिक्षक गंगाधरन मेनन को हाल ही में उस समय इन माइलस्टोन के बारे में पता चला था जब उन्हें बहाल किया गया, एक सर्किट में बांधा गया और शहर भर में कई हेरिटेज वॉक का हिस्सा बनाया गया। मेनन ने कहा, एक शहर जो अपनी छोटी चीज़ों की देखभाल नहीं करता है वह वास्तव में अपना काम नहीं कर रहा होता है। यह सिर्फ तभी हुआ जब प्याऊ और बैंडस्टैंड बहाल किए गए। आज शहर की धरोहर को इस संस्कृति के साथ प्रासंगिक बना रहे हैं। वे आगे कहते हैं, धरोहर की खूबियां इसकी छोटी छोटी बारीकियों में छुपी होती हैं। चेंबुरकर बताते हैं, दुर्भाग्य से प्याऊ के लिए कोई उचित दस्तावेज नहीं थे, वे स्ट्रीट फर्नीचर थे, इनके लिए कोई बेहतरीन डिजाइनर नहीं था, फिर भी उन्हें काफ़ी पेचीदे तरीके से बनाया गया था। हमने इनका उचित दस्तावेजीकरण किया और महसूस किया कि द्वीप शहर में लगभग 100 प्याऊ होंगे। मुंबई उपनगर पहले गांव थे और कुओं पर निर्भर रहते थे। हमने लगभग 50 प्याऊ को ढूंढ कर निकाला है। इनमें से तकरीबन 25 को कुछ प्रयासों में पुनर्जीवित किया जा सकता है, 4 को बहाल कर दिया गया है और बीएमसी के साथ 18 अन्य को बहाल करने की योजना है। ठीक किए गए प्याऊ एक बार फिर से राहगीरों के लिए मुफ्त पानी पीने के ठिकाने बन गए हैं। शिवाजी पार्क में रामजी सितिबा प्याऊ से पवार का बोतल भरना इसका प्रमाण है। वह कहते हैं, करीब 20 दिन पहले किसी ने नल चुरा लिया था, फिर भी शिवाजी पार्क में आने वाला हर व्यक्ति यहाँ से पानी की बोतल भरता है क्योंकि फ्री पीने के पानी का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। द प्रिंट पॉट के इस अंक में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की खबरें जानने के लिए जुड़े रहिए द प्रिंट के साथ।